तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 6 और अध्याय 14 श्लोक 13 से 17 तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंगिर उवाच अपि तेन्मायम्। ओके, आई रिपीट अगेन। अपि तेन्मायम् स्वस्ति प्रकृतिनाम तथात्मनाम् तथा आत्मना यथा प्रकृति वीर गुप्ता भुमान राजा च सप्तभी। अंगिरा उवाच, ऋषि अंगिरा ने कहा, अपि क्या ते तुमको अनाम्यम स्वास्थ्य स्वस्ति कुशलता प्रकृति नाम अपनी राज्य सामग्री का पार्षद तथा सामग्री तथा और आत्मना अपने शरीर मन तथा आत्मा का यथा सदृश प्रकृति भी प्रकृति के तत्वों से गुप्त आरक्षित पुमान जीवित प्राणी राजा च भी सप्त भी सात से। ट्रांसलेशन एंड पोपट बाय शिला प्रभुपाद। मैं पहले 13 से सतारवां श्लोक है, उससे पहले ट्रांसलेशन, उसमें कोई तात्पर्य नहीं है। उनकी सभी रानियां सुमुखी एवं आकर्षक नेत्रों वाली थी, फिर भी ना तो उसका ऐश्वर्य तथा सैकड़ों हजारों रानियां ना वे प्रदेश जिनका वह सर्वोच्च स्वामी था उसे प्रसन्न कर सकते थे। एक बार समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अंगिरा नामक शक्तिशाली ऋषि अस्मात अपनी स्वेच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में पधारे। चित्रकेतु तुरंत ही अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और उनकी अर्चना की। उसने जल तथा खाद्य सामग्री भेंट की और इस प्रकार अपने परम अतिथि के प्रति मेजबान का अपना कर्तव्य पूरा किया। जमगीरा ऋषि सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर चुके तो राजा अपने मन तथा इंद्रियों को सीमित करके ऋषि के चरणों के निकट भूमि पर बैठ गया। हे राजा परीक्षित, जब चित्रकेतु विनीत भाव से नत होकर ऋषि के चरण कमलों के निकट बैठ गया तो ऋषि ने उसकी विनयशीलता तथा उसके आतिथ्य के लिए साधु भाद किया और उसे निम्नलिखित शब्दों से संबोधित किया। ये वाला श्लोक अभी आता है। ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आशा है कि तुम अपने शरीर तथा मन और अपने राज्य पार्षदों तथा सामग्री सहित कुशल से हो। जब प्रकृति के सातों गुण संपूर्ण भौतिक शक्ति माया अहंकार तथा इंद्र तृप्ति के पांचों पदार्थ अपने अपने क्रम से ठीक रहते हैं तो भौतिक तत्वों के भीतर जीवात्मा सुखी रहता है। इन सात तत्वों के बिना कोई रह नहीं सकता। इसी प्रकार राजा सात तत्वों द्वारा सदा आरक्षित रहता है। ये तत्व हैं उसका उपदेशक स्वामी या गुरु, उसके मंत्री, उसका राज्य, उसका दुर्ग, उसका कोष, उसके राज्य अधिकारी तथा उसके मित्र। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शिष्यद स्वामी ने भागवत की अपनी टीका में यह श्लोक उद्धृत किया है, स्वाम्य मात्यो जनपदा दुर्ग द्रविण संचया दंडो मित्रम च तस्यता सप्त प्रकृतियो मता। राजा अकेला नहीं होता, उसका गुरु या परम निर्देशक सर्वोपरि है, फिर उसके मंत्री, राज्य, दुर्ग, कोष, शांति की व्यवस्था और मित्र अथवा सहयोगी होते हैं। यदि इन सातों को सही ढंग से रखा जाए तो राजा सुखी रहता है। इसी प्रकार भगवद गीता में बताया गया है कि जीवात्मा या आत्मा महत तत्व अहंकार तथा पंच तन्मात्रा अर्थात इंद्रिय तप्ति के पांच पदार्थों से के भौतिक आवरण के भीतर रहता है। जब ये सातों ढंग से रहते हैं तो जीवात्मा सुखी रहता है। सामान्य जब राजा के पार्षद शांत एवं आज्ञाकारी होते हैं तो राजा सुखी रहता है। अतः गिरा ऋषि ने राजा के निजी स्वास्थ्य तथा उसके सात पार्षदों की कुशलता के संबंध में पूछा। जब हम अपने मित्र से यह पूछते हैं कि कुशल तो है, तो हम केवल उसी के बारे में अर्थात व्यक्तिगत स्वयं नहीं जानना चाहते हैं, वरन उसके परिवार, आय के साधन, उसके सहायकों तथा सेवकों आदि के विषय में भी जानना चाहते हैं। जब ये सब कुशल से रहते हैं तभी मनुष्य सुखी हो सकता है। ओम अज्ञान तिमरंदस्यज्ञानांजन शलाका चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवै नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतलेश गिरिराज स्वामी ते नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतलेश भक्ति विदान स्वामी ते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं धीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुविष्कृपा सिन्धु वैभवपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो साधु का उद्देश्य है, गृहस्थ के घर जाकर जब मधुकारी करने जाता है तो उसका उद्देश्य केवल मधुकारी नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है कि उस गृहस्थ को किसी ना किसी तरह भगवान की तरफ लगा दें। क्योंकि इस जीवन में जो भी व्यक्ति है वो केवल भोग विलास में फंसा होता है, और राजा जब बन जाए तो बात ही कहने क्या है, क्योंकि राजा के पास तो सब भोग विलास की व्यवस्था होती है। तुंगिरा ऋषि जब गए उनको पता था कि जो राजा तो बहुत बढ़िया है, धार्मिक है, परंतु अभी उसको शोक बहुत है। राजा चित्रकेतु के पास एक या दो या चार पत्नियां नहीं थी, 1 करोड़ पत्नियां थी। मगर दुर्भाग्यवश उसके पुत्र नहीं था और यह शोक उसको बहुत सता रहा था। 1 करोड़ रानियां और 1 करोड़ रानियों में से एक भी पुत्र नहीं दे सकती, बहुत शोक। आप जब आगे इस अध्याय को सुनेंगे या इसको पढ़ेंगे तो उसके विषय में आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे जो सुख का कारण है वही दुख का कारण बनता है। इस संसार में जो भी व्यक्ति सोचता है कि यह सुख की वस्तु है, मगर उसको यह पता नहीं कि वही वस्तु दुख की होती है। प्रभुपाद जी ने कितनी बार बतलाया है कि वही सूर्य देवता है, वही जो सर्दियों में कितना आनंद आता है सूर्य के नीचे बैठकर, वही सूर्य गर्मी में दुख देता है। वही ठंडा पानी कितना आनंदमय होता है गर्मियों में, वही ठंडा पानी सर्दियों में दुख देता है। बिजली वही है, वही हीटर से हीट ताप देती है, बिजली वही है, वही फ्रिज से सर्दी देती है, वस्तु वही है, मगर परिस्थिति के हिसाब से आपको सुख और दुख मिलता है। व्यक्ति इसी को, जिसको सुख मानता है वो सुख होता नहीं है। और यहां पर अंगिरा ऋषि राजा को पूछते हैं कि राजा तेरा राजपाट कैसा है। इनडायरेक्टली वो बता रहा है भी तुम्हारे पास गुरु है, तुम्हारे पास मित्र है, तुम्हारे पास मंत्री है। एक राजा का एक चाणक्य नीति है। चाणक्य पंडित वो जब मंत्री था, मगर उसने एक बात की चाणक्य पंडित ने, वो कभी राज के अंदर नहीं रहा। सब कुछ राजा को राजा बना दिया, परंतु खुद वो राजमहल के बाहर एक झोंपड़ी में रहता था। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। भोग विलास में नहीं फंसा था वो। चाणक्य नीति में क्या आता है कि जो राजा होता है सबसे पहले, जब भी राजा गद्दी पर बैठे उससे को पहले, सबसे पहले उसको जो अपनी जो सुरक्षा होती है, जो बाउंड्री होती है, सीमा की रक्षा करना पड़ता है राजा को। ये पहला कर्तव्य राजा को गद्दी पर बैठकर। फिर दूसरा कर्तव्य होता है कि उसके पास जो कोष है, जो ट्रेजरी है, धन है, वो धन कैसे अर्जित किया जाए। धन होना चाहिए, धन के बगैर राज नहीं चल सकता है ना, कोष। फिर तीसरा काम आता है कि जो प्रजा की सेवा में जो भी उसने सुरक्षा की, उसने कोष इकट्ठा किया, फिर वो प्रजा के ऊपर लगाए। मैं किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा यहां पर, मगर जब देखते हैं आपके सामने होता है, जैसे प्रेजेंट इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ने पहले वो चाणक्य नीति अपना रहा है। उन्होंने क्या किया, पहले वो फॉरेन पॉलिसी लाए, फिर जीएसटी लाया, इकट्ठा किया, कोष इकट्ठा किया, फिर जनता की सेवा में। ये राजा का कर्तव्य होता है, ऐसे ही राज चलता है चाणक्य नीति के हिसाब से। अब अंगिरा ऋषि उसको पूछने आए हैं कि उसको पता है कि राजा अभी उसका मन है वो ठीक नहीं है। उसको इनडायरेक्टली बतला रहे हैं भाई तुम्हारे पास गुरु है, तुम्हारे पास मंत्री है, तुम्हारे पास सगे संबंधी हैं। सात वस्तुएं यहां पर उन्होंने बतलाई भी, राजा तू कुशल तो है, कुशल होना तो चाहिए। अब इनडायरेक्टली इसको साइकास्टिक रिमार्क कह लीजिए कि एक तंज कस रहे हैं भाई तू कुशल तो होना चाहिए है ना। संसार यही तो सोचता है ना कि मेरे पास किसी को दुख अपने परिवार का, किसी को शरीर का, किसी को धन का, यही इसी के चक्कर में व्यक्ति घूमता रहता है। वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए देखता रहता है व्यक्ति, है ना, कि जो धन है धन क्यों अर्जित करता है, कि मेरा भविष्य में जो है मेरे को धन की कमी ना हो जाए। किसी के पास चार धन होगा भी ना तो भी वो अर्जित करता रहता है, मेरा भले वो दूसरे दिन हार्ट अटैक होए मर जाए, अर्जित करता रहता है। परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, सगे संबंधियों की चिंता, वो थोड़ा बहुत कभी इधर यहां पर दिल पे कुछ थोड़ी सी घंटी बजी तो उसकी चिंता, इसी के लिए पीछे लगा रहता है। मैं कल रात को एक प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन पढ़ रहा था। प्रभुपाद जी कलकत्ता में जब गए, कलकत्ता में जब उन्होंने मंदिर का वहां पर एक छोटा सा स्थापित किया प्रचार के लिए, विदेशी भक्त थे। अब वहां पर बहुत ही मिनिमम उनको कोई व्यवस्था नहीं थी। आजकल तो सब व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था है, खान पीन की व्यवस्था है। जब हमारे गुरुदेव हिजोरनाथ गिरिराज स्वामी, मैंने उसको उनको पूछा एक बार कि हम तो बचपन से जो शौच वगैरह है बाहर चले जाते थे, तभी कोई टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती थी, फ्लश सिस्टम नहीं होता था, भंगी आते थे ऐसे उठा के लेके जाते थे, आपने किसी ने देखा होगा या आपके घरों में भी ऐसे होगा, हमारे घर में था, रोज भंगी आती थी उठा के लेके जाती थी मलमूत्र को, तो हमारे लिए इसीलिए सुबह सुबह उठो जाकर अपने को फ्रेशन अप कर कर लो, तो जहां तो बाहर जाते थे तीर्थ यात्रा भी जाते थे, कभी पहाड़ों में जाते थे चिंतपुर्णी ज्वाला जी कांगड़ा वैष्णो देवी, तो वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, आपने शायद आप भी कहे होंगे, बाहर शौच करके आ जाते थे, बहुत आनंद था। हमने अपने गुरुदेव को एक बार पूछा कि जब हम तो चलो ये एक संस्कृति में पड़े हैं बले हैं, वहां पर हमने सब कुछ देखा, हमारे लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अच्छी व्यवस्था है या अच्छी व्यवस्था नहीं है, मगर आप तो विदेश से आए और ये यहां पर आकर आपने कैसे देखा, आपने कैसे उसको टॉलरेट किया। उन्होंने मेरे को खुद बताया, बोलते कि जब मैं इधर दिल्ली में जब हम पहली बार आए, 40 डिवोटी जो प्रभुपाद जी के थे तो उनमें गिरिराज स्वामी भी थे, तो तब वो अमृतसर से आ रहे थे रास्ते में, तो प्रभुपाद जी को कोई मिलने आया दिल्ली से, वो प्रभुपाद जी का दोस्त था जो कि अमेरिका में जाने से पहले प्रभुपाद जी को जानता था, अब उनको पता लगा कि स्वामी प्रभुपाद जी का प्रचार बढ़ गया है, उन्होंने अपना जो मैसेज है वो चैतन्य महाप्रभु का संसार को दे दिया है, तो वो मिलने आया, उसको हर्षित हुआ ना कि मेरा जो मेरा मित्र था उसने इतना बड़ा काम कर दिया है भगवान का, वो दर्शन करने के लिए आता है। तो उन्होंने हमारे गुरुदेव को बोला कि तुम ऐसा करो, ये मेरे मित्र हैं, तुम यहां पर उतर जाओ ट्रेन से और यहां दिल्ली में प्रचार करो। आप प्रभुपाद जी की आज्ञा, वो उतर गए। अब मैंने उनको पूछा, और भी दो यमुना मदर यमुना भी थी उनके साथ और गुरुदास, ये तीन व्यक्ति उतरे ट्रेन से, और चांदनी चौक में प्रभुपाद रहते थे, उधर ही वो उनका मित्र था, उन्होंने व्यवस्था कर दी। तो बोलते जब हम चांदनी चौक में रहे तो वहां पर कोई पखाने का कोई अरेंजमेंट नहीं था उनके घर में, आप शायद पता नहीं मजनू का टीला देखा किसी ने दिल्ली में, नहीं देखा मजनू का टीला, आप जाइए, आपने देखा है ना जमुना जी के बाजू में, देखा ना आपने वहां पर सब टॉयलेट्स बनी होती हैं जमुना जी के बाजू में, आपको पता है कैसी व्यवस्था होगी, हमने वो चीजें हमने यूज की हुई हैं, हमारे कोई रिश्तेदार रहते थे तभी हम जाते थे उधर बचपन से। अब वहां पर व्यवस्था नहीं थी तो गिरिराज स्वामी बताते हैं कि कैसे वो छत के ऊपर किसी और व्यक्ति की टॉयलेट्स होती थी चार घर छोड़कर। तो उस मित्र ने पूछा कि मेरे कुछ हमारे ऐसे भक्त आए हैं हरे कृष्णा के, उनको फैसिलिटी यूज करनी है, आपकी यूज कर सकते हैं, बोलते हाँ कर लो। तो वो छत के ऊपर से ऐसे ऐसे वो दीवार होती है ना छोटी छोटी, फांद कर फिर जाते थे, उसको यूज करते थे, फिर आते थे, और वो भी वहां पर फ्लश टॉयलेट नहीं थी, मींस आप अपना मलमूत्र तैयार करके आ जाओ तो वो उठा के लेके जाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने प्रचार किया। अब मैंने स्टोरी पता नहीं क्यों बताई आपको, परंतु मेरे को जब अभी भगवान की कथा है तो कोई ना कोई तो कथा निकलती रहती है। कहने का भाव क्या है कि जो संसार है इसमें आप सुख और जो दुख है, राम जी ने रामायण में भरत को कहा कि भरत ये जो संसार है ये धर्मशाला का कमरा है, जैसे व्यक्ति धर्मशाला में जाता है, आजकल तो होटल बन गए ना, कहीं आप यात्रा पे जाओ तो होटल में रहते लोग जाके, बोला बढ़िया से बढ़िया होटल मिले ना, बोला धर्मशाला का कमरा है, जाओगे वहां पर एक रात रहोगे और सुबह उठकर क्या होगा, निकल जाओगे। तो हमारा जो जीवन है ये अभी जो भी हैं हम, जिस व्यवस्था में हैं, ये बहुत टेम्परेरी है, ये जाने वाली नहीं है। भले रोता रहे व्यक्ति, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, परिवार, इसीलिए इसको माया कहा जाता है। माया जो कि नहीं है, और जिस परिस्थिति में भी हम हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, भले वो बहुत बढ़िया सुखी व्यक्ति हो भौतिक दृष्टि से, या बहुत बड़ा दुखी हो भौतिक दृष्टि से, ये सब टेम्परेरी है। अब मैंने ये बात, हाँ मेरे को याद है क्यों बताई थी स्टोरी मैंने, प्रभुपाद जी कलकत्ता में जब उन्होंने वो खोला तो वहां पर भक्तों को फैसिलिटी नहीं थी, तो वहां पर भक्त लोग, एक भक्त जो था उसका नाम भूल गया मेरे को, वो जो घी के जो भी घी की जोत जगाते हैं ना हम ठाकुर की, उसमें थोड़ा बहुत घी रह जाता है, अब रोटी खाता था उसको रोटी चाहिए थी, घी लगा हुआ, घी तो था नहीं भक्तों के लिए, तो वो क्या करता था, जब वो जो आरती होती थी उसको निकाल लेता था, आरती की विक को उसको लगा के रोटी पे लगा के वो खाता था। तो अब प्रभुपाद जी आए तो लोगों ने शिकायत की, प्रभु जी प्रभुपाद ये भक्त है ना, ये घी यहां से निकाल के खा लेता है। तो प्रभुपाद ने सबको बुलाया, क्या बात है, माल कृष्ण गोस्वामी महाराज वहां के तभी वो वहां के मीन कंट्रोलर क्या बोलते हेड थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको इनडायरेक्टली डांटा, भाई बोले मैं तो प्रभुपाद जी जो भी आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर योर डिजायर, ही सेड बट दिस इज नॉट माय डिजायर, मैं आपकी इच्छा के हिसाब से ही सब कुछ कर रहा हूं जो भी व्यवस्था है भक्तों की। प्रभुपाद जी बोलते मेरी ये इच्छा नहीं है, आप हफ्ते में एक बार मिलिए, इष्टा गोष्ठी कीजिए, जो भी कोई समस्या है एक दूसरे से आप उसको डिस्कस करके सॉल्व करिए। फिर तुरंत प्रभुपाद ने एक बात कही जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, पहले तो प्रभुपाद ने बोल दिया कि आप सब लोग बैठकर उसको डिस्कस करिए, फिर तुरंत प्रभुपाद ने उसको चेंज कर दी बात को, बोलते कोई जरूरत नहीं है, बोलते जब तक हम इस संसार में हैं तब तक समस्याएं रहेंगी, और समस्याओं के ऊपर ही आप चिंतन करते जाओगे तो अपना जो गोल है वो भूल जाएंगे हम। तस्मात् एकेन भगवान सात्वतां पतिः, समस्या तो हाँ ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे करके मुर्गे की तरह वो कबूतर की तरह आंख बंद कर लो, कबूतर की आंख बंद नहीं होनी चाहिए, वो तो आपकी आंख खुली होनी चाहिए, क्या हो रहा है उसकी कोई मगर चिंता करने की जरूरत नहीं है उसमें, क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है, होता रहे, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप क्या, कर सकते हैं, मैं आपको नहीं ठीक कर सकता, आपको नहीं ठीक कर सकता, आप नहीं ठीक कर सकते, बोला यार ये भक्त को मैं नहीं ठीक कर सकता, बोला मैं उसको नहीं, अरे संसार को ठीक नहीं कर सकते उसके लिए, हाँ ये जरूर होना पता होना चाहिए कि गलत हो रहा, तो हो अब क्या कर सकते उसको। तस्मात् एकेन भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्ये कीर्तितव्ये देह पूज्यश्च नित्यतः, ये श्लोक मैं कई बार कहता हूं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूछा, सबको पूछा क्या दिख रहा है, एक छोटी सी चिड़िया लगा दी, चिड़िया के ऊपर बाल लगाओ, कोई बोलता है मेरे को वृक्ष दिख रहा है, कोई बोलता है मेरे को तो पत्ते दिख रहे हैं, कोई बोलता है मेरे को चिड़िया दिख रही है, अर्जुन बोलता है मेरे को तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो भक्त का काम होता है कि वृक्ष भी वहां पर होगा, वहां पर कांटे भी होंगे, वहां पर फूल भी होगा, वहां पर सब कुछ होगा, मगर भक्त को केवल कृष्ण की चरण दिखाई देंगे। जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है, इसका ये थोड़ी बोलेंगे भी मैं तो केवल आंख ये बाकी कुछ नहीं है, है ना, वहां पर कांटे भी हैं, वहां पर फूल भी हैं, वहां पत्तियां भी हैं, सब कुछ है, मगर तस्मादेकिन मनसा, भगवान की चरणों की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। जब तक भगवान कृष्ण ही हमारा केवल और कुछ नहीं, संसार में और कुछ नहीं, ना योग ना कर्म ना ज्ञान, कुछ नहीं चलेगा। वो तो बना हुआ है उनके लिए, मायावादियों के लिए बना हुआ है, योगियों के लिए योग बना हुआ है, हमारे लिए नहीं योग बना है। हमारे लिए तो केवल एक ही चीज बनी है, क्या बनी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु खुद आए तो क्या सिखाया उन्होंने, उन्होंने ऐसे आंख बंद किया क्या, आंख बंद करके योग किया क्या? चलो बहुत लोग आएंगे तो सुनने करने के लिए, आ जाओ, अलोम विलोम करेंगे, कपाल भाती करेंगे, भैया कपाल भाती, जिसको कपाल भाती करना है वो कपाल भाती करे। भक्त का काम कपाल भाती अलोम विलोम नहीं है, भक्त का काम एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। और लीलाओं में कृष्ण दिखाते हैं, द्रौपदी ने साड़ी पकड़ी हुई है, साड़ी खींच रहे हैं, द्रौपदी साड़ी पकड़ रही है, कृष्ण को बुला रही है, मगर कृष्ण नहीं आ रहे। सोचती पहले दोनों हाथों से पकड़ी उसने साड़ी, बुला रही है कृष्ण आओ कृष्ण आओ, कृष्ण नहीं आए। जब बिल्कुल थोड़ा रह गया, हाथ से छूटने लगी साड़ी, तो एक हाथ ही रह गया, कृष्ण आओ, फिर भी कृष्ण नहीं आए। जब तक हम संसार को पकड़े रहेंगे ना, ये संसार को, भोग को, विलास को पकड़े रहेंगे, तब तक भैया कृष्ण नहीं आने वाले। अरे प्रभु जी 20 साल से माला कर रहा हूं मगर कृष्ण कभी दिखाई नहीं देते। अरे 40 साल से माला कर रहा हूं कृष्ण दिखाई नहीं देते, मेरे पास तो कभी आते ही नहीं है, और सपने में भी नहीं आते। भैया नहीं आएंगे अभी, क्यों नहीं आएंगे, ये पकड़ा हुआ है ना थोड़ा सा, मेरा पुत्र भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरा धन भी है, मेरा सुख भी है, मेरा वैभव भी है ना, मेरे को उपाधि भी चाहिए, रिकॉग्निशन। अरे नहीं आएंगे कृष्ण, से कृष्ण तभी आते हैं जब द्रौपदी पुकारी, हे गोविंद हे गोपाल, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही द्रौपदी की शरणागति चैतन्य महाप्रभु ने दिखाई, कृष्ण में आया। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए पूर्ण शरणागति की, जब तक पूर्ण शरणागति व्यक्ति की नहीं होती तब तक कृष्ण नहीं आएंगे। और शरणागति किसने सिखाई, स्वयं कृष्ण ने आकर सिखाई। कैसे सिखाई, चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई। क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ण शरणागति कर दी। चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर बने, रूप सनातन बटरघुनाथ श्री जुबाल बरदास रघुनाथ, क्या किया, पूर्ण शरणागति कर दी। क्या किया, छोड़ दिया सब कुछ। अब युक्त वैराग्य को आजकल लोग बहुत, जो युक्त वैराग्य होता है उसको लोग, एक सेकेंड, लोग युक्त वैराग्य को इतना आसान ले रहे हैं आजकल। अरे प्रभु जी हम तो युक्त वैराग्य कर रहे हैं, छह गोस्वामी ने युक्त वैराग्य सिखाया, युक्त वैराग्य के नाम से उनको गाड़ी चाहिए, हम तो कृष्ण के लिए ले रहे हैं। अरे भैया कृष्ण के लिए नहीं ले रहे हो, कृष्ण के लिए ले लियो तो कृष्ण गाड़ी खरीदो और दे दो कृष्ण को। अरे अपने भोग के लिए ले रहे हो, थोड़ा बहुत कृष्ण के लिए यूज कर रहे हो, 1-2%। बड़ा घर बनाओगे, हाँ कमरा बनाया कृष्ण के लिए, बहुत बढ़िया, कृष्ण के लिए है, ना ना ना, ना। भोग के लिए, मन की तसल्ली के लिए बोलते हैं कृष्ण के लिए, मगर नहीं। युक्त वैराग देखना है तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को देखिए, युक्त वैराग देखना है रघुनाथ दास गोस्वामी को देखिए, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ दे दिया। युक्त वैराग्य देखना है तो भक्ति और ठाकुर को देखिए, युक्त वैराग्य देखना है तो हमारे अपने प्रभुपाद जी को देखिए। आजकल जितने भी गुरु हैं इंडिया के अंदर, आप देखोगे, मैं गारंटी कर देता हूं आपको, गुरु मरता है तो अपने सगे संबंधियों को छोड़ के जाता है। नहीं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आपको अभी गिनाने लग जाऊंगा यहां पर बैठकर तो क्लास उसी में निकल जाएगी। बड़ा बड़ा आश्रम बनाता है गुरु, अपने सगे संबंधियों को दे जाता है, ठीक है नहीं, मित्र बंधु भाइयों को दे जाता है अपने। प्रभुपाद ने इतना बड़ा संस्था खड़ी कर दी, किसी को दिया? किसी सगे संबंधी को दिया? अपने बच्चों को दिया? किसको दे गए? मातृ कृष्ण को। हमारे में गौरंगर भक्तिगण वैराग्य प्रधान, वैराग तो जरूर होना चाहिए, मगर अहंकार से हम बोलते हम कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, मेरे बगैर घर नहीं चल सकता है ना, मेरे बगैर ये यहां का कृष्ण बलराम हॉल नहीं चल सकता, मैं इंचार्ज हूं ना, ऐसे बोलते हैं लोग। मेरे को दो कहानी याद आ रही, मैं आपको बताता हूं। आपने घटोत्कच का नाम सुना है ना, भीम का लड़का था घटोत्कच, और उसका लड़का था हडिंबा, और घटोत्कच का लड़का हुआ है बर्बरिक। अब बर्बरिक आ रहा है तो कृष्ण को पता लग गया बर्बरिक आ रहा है लड़ने के लिए, बोला सब जा रहे हैं मैं भी चलता हूं। अब जब लड़ने के लिए आए, कृष्ण बोले अब ये तो समस्या हो गई, बर्बरिक बहुत बड़ा योद्धा था, उसके पास गए, कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया, उसके पास गए, भाई तुम कहां जा रहे हो योद्धा? ऐसा है जी, मैं घटोत्कच का पुत्र हूं, भीम का पुत्र हूं, और कुरुक्षेत्र में जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हो? सब वीर युद्ध करने जा रहे हैं, मेरे खून में भी, मैं भी भीम का पुत्र हूं, मैं भी युद्ध करूंगा। अभी किसकी तरफ से युद्ध करोगे? बोला जो हारता होगा उसकी तरफ से चला जाऊंगा, मेरा अपना धर्म है। अच्छा, कितनी देर लगाओगे? बोला 2 सेकंड में सारा मैदान साफ कर दूंगा। वो कैसे? बोलता 2 बाण है मेरे पास, बस 2 बाण पर्याप्त है पूरी कौरवों की सेना खत्म करने के लिए, और 1 बाण पर्याप्त है कौरवों के लिए, और 1 बाण पर्याप्त है पांडवों के लिए। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया योद्धा हूं। तभी तुरंत कृष्ण ने उनको दर्शन दे दिया, बोले इसको रोकना कैसे है, मैं अपने मित्र जो पांडव है, मेरे मित्र हैं, उनको बचाना कैसे है। तुरंत जब देखा उसने, अरे ये तो कृष्ण है, उसको पता लग गया, अरे कृष्ण स्वयं भगवान मेरे दादा, अरे मेरे दादा के सुहृद कृष्ण साक्षात, ओ पांव पड़ गया कृष्ण के, अरे क्या मेरा कितना भाग्य है कि मैं तो युद्ध के लिए जा रहा था, आपके दर्शन हो गए मेरे को। अरे घटोत्कच कुछ दान में नहीं दोगे? अरे प्रभु आप पूछे क्या दूं, ये मेरे को सर काट के दे दो अपना। और एकदम तुरंत उठाई खड़ा गलो सर, अरे कहा मेरा प्रभु सर, इसको शरणागति कहती है, वो प्रभु एक इच्छा है, सर काटा डाल दिया, एक इच्छा रह गई क्या? मेरे को देखना था सब वीरों को युद्ध देखना था। बोले घटोत्कच कोई बात नहीं, तूने मेरे को अपना सर दे दिया है, तेरा सर वहां पर वो टीला बोलते हैं हमारे, वो पहाड़ी को, छोटी सी पहाड़ी जैसी होती है उसको टीला बोलते हैं। बोले घटोत्कच तू वहां पर टीले पर बैठकर जो 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 बाण के ऊपर सर को टांग दिया, वो पूरन दिखाई दे रहा था उनको, सारा युद्ध उन्होंने 18 दिन पूरन युद्ध देखा। घटोत्कच को, सॉरी बर्बरिक को, बर्बरिक ने पूर्ण युद्ध देखा। अब भगवान ने लीला ऐसी की कि पांडव जो कभी अपने कभी वाद विवाद में नहीं आते थे, पांचों भाई कभी वाद विवाद में नहीं आए, सब कुछ नष्ट हो गया। आप छोटी मोटी बात देखिए ना, किसी का कोई धन संपत्ति कुछ, अरे ये भगवान क्या कर रहे हैं, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, हरे कृष्णा कर रहा हूं, और इतनी समस्याएं हो रही है मेरे को, लोग दुखी होते हैं ना, भगवान को भी कई बार कोसते हैं, अरे कमाल है, मैं तो हरे कृष्णा भक्त बना, इतनी समस्याएं। अरे समस्याएं देखनी है तो पांडवों को देखो, मगर उन्होंने कभी शंका नहीं की भगवान के प्रति। राजपाट उजड़ गया, अरे किसी पत्नी को, किसी कोई किसी पत्नी को हाथ लगा दे तो कितना दुख हो उस व्यक्ति को, पति को। कोई कुदृष्टि डाल दे किसी की पत्नी के ऊपर, पति को कितना दुख होता है। पति बोलेगा मैं तो मार दूंगा तेरे को अभी, मगर देखो कितना अपमान हुआ द्रौपदी का, कितने अपमान से पांडव गए। मगर कभी भी उन्होंने सब कुछ, कभी कृष्ण की शरण नहीं छोड़ी, इसको शरणागति कहते हैं। कभी मन में शंका नहीं आई कृष्ण के प्रति, इसको शरणागति कहते हैं। वाद विवाद हुआ, कभी जिंदगी में वाद विवाद नहीं हुआ, आज वाद विवाद हो गया, बोला मैंने पांडव को मैंने मारा, कौरवों को बोला मैंने मारा, बोला मैंने मारा। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी समझाने के लिए, सब कृष्ण के प्रयास है। कृष्ण आप बताइए कि युद्ध में किसने कितने वीरों को मारा, किसके कारण ये युद्ध जो है ये जीता गया। कृष्ण बोलते उधर चले जाओ, टीले के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ उसके पास जाओ, बर्बरी के पास आए। अब बर्बरी को पूछते हैं भाई ऐसा ऐसा कृष्ण ने हमको भेजा है, तुम ये बताओ हमने युद्ध जीता सारा, अब ये बताओ ये युद्ध अर्जुन ने जीता कि भीम ने जीता कि युधिष्ठिर ने जीता, किसने जीता, किसके कारण हम यह युद्ध जीते। बर्बरिक बोलता तुम किसी ने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे कारण युद्ध नहीं जीता गया पांडवों का। बोला फिर, बोला इस युद्ध स्थली के ऊपर वो चक्र चल रहा था भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र, सब कुछ उसी के कारण हुआ है। तो करने वाले केवल कृष्ण हैं। प्रकृते क्रियामानी गुणे कर्माणी सर्वे अहंकार विमूढ़ता करता हम इति मन्यते। अहंकार के प्रति बोलता है कि मैंने किया, मेरे कारण नहीं चलेगा, पुजारी का डिपार्टमेंट मेरे कारण नहीं चलेगा, खाना बनाने का, अरे मैं किचन में खाना बनाता हूं मेरे कारण ही चलता है, मैं नहीं हूंगा तो ये चलना बंद हो जाएगा, इसी को भ्रम कहते हैं। आज देखिए मैं बैठा हूं कथा कर रहा हूं आपके पास, कल को कोई और बैठा होगा, हम मर जाएंगे फिर भी कथा चलती रहेगी इधर। ये हमारा भ्रम है कि हम कर रहे हैं। मध्वाचार्य जी का डिसअपीयरेंस डे मेरे को याद आया, उड़पी में मध्वाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी के बाद प्रचार किया, जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद उस लाइन में आते हैं, प्रभुपाद उस कैलिबर में आते हैं। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, प्रभुपाद, प्रभुपाद कोई साधारण गुरु नहीं है, ऐसे गुरु हजारों हजारों सालों बाद आते हैं। और उड़पी के राजा की मेरे को बात याद आ गई, कुरुक्षेत्र की बात कर रहे थे तो उड़पी के राजा की बात मेरे को याद आई। उड़पी का राजा भी आया युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में। अब कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए आया तो उसने बोला मैं भी धर्म युद्ध कर रहा हूं, मैं भी आता हूं लड़ने के लिए। जब वहां पर देखा सब सगे संबंधी सब मित्र है, अरे मैं नहीं लड़ूंगा अभी, क्या करूं, कृष्ण एक बात है मैं लड़ूंगा नहीं। तो क्या करोगे, मैं कौरव और पांडव 18 क्षोणी सेना जो है, किसी को थोड़ा सा आइडिया है कि अक्षौणी में क्या होता है, कोई किसी भक्त को पता है अक्षौणी में। मैं आपको, मैंने नोट, मैं आपको बताता हूं, मैं जब छोटा था तो मेरे माता जी गीता पढ़ते थे, जब 4-5 साल के थे, वो गीता प्रेस वालों की एक गीता होती थी, बहुत पुरानी गीता माता जी के पास थी, पता नहीं उनसे भी पहले कितने साल पुरानी होगी, ये 50 साल पहले की बात, 55 साल, आज 60 साल का हो गया हूं मैं, तो उससे पहले पुरानी गीता थी, माता जी पढ़ती थी। उस गीता प्रेस वालों ने क्षोणी की पूरी वहां पर व्याख्या दी हुई थी, आपने शायद कभी किसी ने पढ़ी होगी, उनके वहां पर गीता महात्म होता था, गीता महात्म के अंदर व्याख्या दी होती थी। तो बचपन में हम जब व्याख्या को पढ़ते थे बहुत आनंद आता था सुनकर पढ़कर, तो मेरे को व्याख्या बहुत, इतने साल में ढूंढता रहा व्याख्या मेरे को मिलती नहीं थी, मेरे को ये 2-4 महीने पहले व्याख्या मिली मेरे को, क्षोणी में होते कितने हैं, मैं आपको पढ़ के दिखा सुनाऊं जरा, मैंने रोका बनाया हुआ नोट एक, तो उसका मैं आपको पढ़ के सुनाते हैं इसको, सॉरी, बोलते सेना में 100 हाथी, 1100 रथी, रथ 1100 रथ
और 10,000 घोड़े और 1,00,000 पैदल सिपाही, इसको सेना कहते थे। इसको 2 से गुना कर दो तो इसको चतुरंगी सेना कहते हैं, इसको फिर 2 से गुना कर दो तो इसको वाहिनी सेना कहते हैं, फिर इसको 2 से गुना कर दो तो इसको द्विजनी सेना कहते हैं, फिर उसको 2 से गुना करो तो उसको कहते हैं पूतना की सेना। वो पूतना वो नहीं, पूतना पूतना सेना। उसको गुना कर दो तो अक्षोणी बनती है। तो इस सबको गुना करिए। मैं जब प्रभुपाद जी की जब गीता पढ़ी तो प्रभुपाद ने 64 मिलियन सोल्जर बोला तो मैं डिस्क्रिप्शन ढूंढ रहा था, कभी मिली नहीं। प्रभुपाद ने ऐसा ही बोला। और प्रभुपाद जी की जो व्याख्या है वो एग्जैक्ट ऑन द स्पॉट है, यथारूप बनी है ना गीता, प्रभुपाद भगवत गीता एज इट इज, उसकी व्याख्या पूर्ण पूर्ण स्पॉट पे है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूं। तो एक श्रोणी में 3200 हाथी, जो 35,200 रथ और 3,20,000 घोड़े और 3,200,000 सिपाही, ये एक क्षोणी है। तो आप इनको टोटल कर दीजिए तो पांडवों की 7 क्षोणी में 22,400 हाथी थे, 2,46,400 रथ थे और 2,240,000 घोड़े और 22,400,000 जो थे वो क्या बोलते उनको सिपाही। तो इनको सबको ये 7 क्षोणी और 11 सोनी सबको इकट्ठा कर दो आप तो पता नहीं हो जो भी कैलकुलेशन आती होगी 640 करोड़ जो जितने भी करोड़ों, तो इतने करोड़ों आदमी आप देखिए उनका खाना की व्यवस्था कौन करेगा। हाथियों के ऊपर भी सिपाही चढ़े होंगे, घोड़ों के ऊपर भी सिपाही चढ़े होंगे। अरे करोड़ों अरबों सिपाही और भोजन, घोड़ों को भी भोजन चाहिए, घोड़ों को भी पानी चाहिए, हाथियों को भी पानी चाहिए, जो 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 सिपाही है पैदल उनको भी पानी चाहिए। अब उनकी व्यवस्था आप मेरे को बताइए, कोई करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? उड़पी के राजा ने ये व्यवस्था की। और उड़पी का राजा जब हर रोज अपनी सेना को लाकर वो सब हर रोज व्यवस्था करता था कुकिंग की, तो उस व्यवस्था में एक बात होती थी, शाम को एक भी अन्न का दाना वेस्ट नहीं होता था। वो उतनी ही बनाता था, पर्याप्त मात्रा में हर रोज बनता था। तो उसको पूछा गया, भाई तुम कैसे करते हो ये? बोला, मैं रोज कृष्ण के कक्ष में जाता हूं, हर रोज कृष्ण मूंगफली खाते हैं और जितनी मूंगफली वो खाते हैं उसको मैं 1,000 से गुना कर देता हूं और मेरे को पता है आज इतने मर जाएंगे, तो जितने वो मरते थे उसको मैं कम कर देता था। इसको कहते हैं सेवा। तो उसके मुकाबले में, उड़पी के राजा के मुकाबले में हमारी सेवा कैसी है? कर सकते हैं मेसी सेवा क्या? कोई नहीं कर सकते। इसलिए जो पांडवों की शरणागति है, मेरे को पता है 9 बज गए मगर मैं 5-10 मिनट आपके लेना चाहूंगा इसमें, ठीक है ना? ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। भागवत की कथा पे सुबह को आ गए, बोले हमने भागवत, हाँ प्रभु जी सुन लिया भागवत, ना ना, भागवत बैठकर अभी सुना इसका जो सही मतलब है, भागवत बैठकर आ गए घंटा सुन लिया वो तभी, भागवत शुरू होती है जब आप बैठते तब नहीं शुरू होती, भागवत शुरू होती है जब यहां से बाहर जाओगे तब। प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं वो केवल पढ़ने से नहीं होगी, मैंने पढ़ लिया पुस्तक पढ़ लिया, अरे आजकल तो मैंने देखा है, मैं अभी लंदन में मैंने देखे, अभी मैंने बोला भक्तों को, मैंने पूछा अभी एक थोड़ा सा सर्वे किया, मैंने बात की, अरे लोगों ने गीता भी नहीं पढ़ी हुई है, एक आध बार गीता पढ़ी है, गीता रोज पढ़नी चाहिए। भागवत नित्यम भागवत सेवाया, प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं। पिछली बार मैं भी जब 6 महीने पहले इधर आया था, मेरे को कोई भक्त मिले, 20-25 साल हो गए वो डिवोटी ने दीक्षा ली हुई है,
तो मैं उसके घर गया तो तिलक नहीं लगा हुआ। मैंने बोला आपने तिलक नहीं लगाया? और प्रभु जी मैं मंदिर थोड़ी जा रही हूं। अरे तिलक मंदिर जगाने के लिए होता है क्या? बोले हमको तो प्रभु जी किसी ने बताया नहीं आज तक। अब उसका दोष नहीं है, अनजान है उसको भक्त को, तो उन्हें खुल के मेरे को बोला, उस भक्त ने खुल के बोला, बोली प्रभु जी हमको तो पता नहीं है, हम तो बाहर जाते हैं, हम तो ऐसे ही जाते हैं, पता नहीं वो दिल्ली की थी बॉम्बे की सब पता नहीं कौन शहर की थी किसी की, मेरे को पता नहीं है। तो मैंने उसको फिर समझाया, तुरंत नहाने के बाद सबसे पहले तिलक लगना चाहिए, और तिलक के बगैर कभी भी, हमारे श्रीधर महाराज होते थे, हमारे स्वयं गुरु महाराज ने हमको बताया, जब जब नए नए थे तो हमारे बाथरूम में हमने वो रखा हुआ था, तो उन्होंने बोला नहीं तिलक बाथरूम में नहीं कभी भी रखते, फिर बोला तिलक जो है वो आप बेडरूम में रखिए, नहाने के आने का तुरंत तिलक लगाना चाहिए अपने को भक्त को। और श्रीधर स्वामी थे हमारे घर में, उनके शिष्य का तिलक थोड़ा सा फेड हो गया, अरे क्या डांटा उन्होंने उनको। हमने 10 साल श्रीधर महाराज हमारे घर उधर रहते थे आकर, तो ऐसे हमने सीखा है। उन्होंने तुरंत डांटा उसको, अरे तुम्हारे तिलक नहीं लगा, अरे गुरु महाराज थोड़ा सा फेड हो गया तिलक, अरे जाओ तिलक लगा के आओ अभी तुरंत। वैष्णव का जो माथा है कभी तिलक के बगैर कभी फेड नहीं होना चाहिए। तो ये जो भक्ति है वासुदेव भक्ति, भक्ति योग प्रयोग, छोटी छोटी चीजें हैं ये। तो मेरे को ये बात याद आती है, अभी आज जो पढ़ा है कि जो जो राजा को जो पूछता है तुम्हारा जो जो तुम्हारी ये बाउंड, ये तो ग्रॉस चीजें हैं, स्थूल चीजें हैं ये चार नियम पालन करना। चार नियम पालन करना कोई बड़ा काम नहीं है, ये खान पीन बाहर का खान पीन छोड़ देना होटल, ये तो एक बहुत ग्रॉस चीज है। असल में वैराग्य आता है, जो अटैचमेंट्स है मोह है वो धीरे धीरे वो छोड़ना है, अभी एक दिन में नहीं छूटेगा। कर्म है आपके अच्छे, पूरा जन्म कोई संस्कार है तो भक्ति में आएगा व्यक्ति, हरे कृष्णा करेगा तुरंत छोड़ देगा। एक्चुअली बात तो तुरंत की ही है, छोड़ना ही चाहिए। जितनी देर आप पकड़ रखोगे तब तक, द्रौपदी की तरह पकड़ रखोगे तब तक कृष्ण नहीं आने वाले। उसके लिए वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोगिता जनित याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम, ज्ञान और वैराग्य कि मैं ये शरीर नहीं हूं ये सोचना पड़ेगा 24 घंटे, ज्ञान और फिर वैराग्य। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या बोला है चैतन्य महाप्रभु के लिए, चार कितने किए थे उन्होंने, 4 श्लोक लिखे थे ना सार्वभौम भट्टाचार्य ने, उन्होंने कहा वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, ये जो भक्ति है कृष्ण की वैसे नहीं होगी, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्ना शरीर धारी कृपा अम्बदीयतम अहम प्रपद्ये, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में आता हूं। तो जो शरणागति है, जो कृष्ण की शरणागति है, भक्ति विनोद ठाकुर ने हमको बतलाई है वो कृष्ण की शरणागति, वैसी शरणागति हमको प्राप्त करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, बोलेगा प्रभु जी हम अभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो भाई फिर अगला जन्म लो। शरणागति जो कृष्ण की है, सुरेंडर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, मानस देह जेहो जे कुछ मोर अर्पण तुव पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर ये शरणागति है। संपदे विपदे आगे क्या लाइन है, जीवन मरणे, अरे आपके पास आनंद है सुख है या विपदा है, जा मरने लगे हो या जी रहे हो, किसी भी हालत में मार भी राख भी। कल मैं बिहारी जी का दर्शन करने आ गया तो पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने अपनी पत्नी को बैठे यही बताया, यही श्लोक यही मैंने पढ़ा,
मैंने बोला शरणागति करना पड़ेगा। देखो ये पति का कर्तव्य है। पुराने जमाने में औरत की दीक्षा नहीं होती थी, ये पति का कर्तव्य है। ये नहीं कि 60 साल की उम्र हो गई और छोड़ के दूसरी औरत लेके जा रहा है। अरे भैया ये क्या है, 60 साल में अभी भोग के लिए भोग रहा है, पति की ड्यूटी है ये। और ये ड्यूटी तब तक नहीं होगी, मार भी राख भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास पति तुवा अधिकार। अरे तू मेरे को मार या तू मेरे को जो भी कर। ये शरणागति भक्ति नो ठाकुर ने सिखाई है। दास, दास का अर्थ पता क्या है, आपने देखे ना वो दास, ये तो प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दिया सर्वेंट, ताकि पैलेटेबल करने के लिए। एक्चुअली दास का अर्थ होता, देखा ना पुराने दास होते थे, दास का अर्थ सब कुछ तुम्हारे ऊपर, मार भी राख भी तू जैसे करना है, जैसा भी संसार को। केवल इसीलिए दो चीजें मेरे को याद रहती हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो जीवन है, इस जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर ज्यादा समस्या है उसको सोचने का नहीं, केवल कृष्ण के प्रति हमारा लगन, कृष्ण के प्रति हमारा ये उद्देश्य जो जीवन का है केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिए है। और ये नहीं है कि कल को मैं जी प्रचार करूंगा, मैंने प्रचार कर दिया, मैंने इतनी पुस्तक दे दी। अरे भैया तुम कौन पुस्तक देने वाले होते हो, तुम कौन होते हो प्रचार करने वाले। ठाकुर ने किसी को मैसेज देना होगा तो पुस्तक दे दी, किसी ने कोई अच्छी, हमारे मुख से कभी आपको कोई अच्छी बात लगी होगी तो ठाकुर ने कहला दी, बुरी होगी तो हमारी कोई त्रुटि होगी उसमें। कहने का भाव है केवल कृष्ण की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। और ये नहीं है कि मैं प्रचार करूंगा तो 50 आदमी भक्त बन जाएंगे, 100 आदमी भक्त बन जाएंगे। अरे तुम्हारे प्रचार में क्या वैल्यू है, 50 बने कि 100 बने कि नहीं बने, उसमें ये नहीं है। उसमें चेतना ये फॉलोअर्स, इसको कहते हैं कि आजकल वो टिकटॉक आ गई है ना, आप देखा ना टिकटॉक में लोग, अभी भक्त लोग भी उसमें टिकटॉक में जा रहे हैं, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं, ये भक्ति नहीं है। और लोग मेरे को व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, अरे भैया देख ले, कोई नहीं बेटा इधर ही जन्म मिलेगा, ऊपर नहीं जाएगा, कृष्ण नहीं प्राप्ति होंगी, वो टिकटॉक वालों के पास ही जाएगा तू, समझे नहीं। ये मोटिवेशनल स्पीकर, ये टिकटॉक, ये जो भी बनता है, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। मेरे को 1000 आदमी देखता है, 10,000 आदमी देखता है, 20,000 आदमी देखता है, 2,00,000 देखता है, ना दनम ना जनम ना सुंदरीम, मेरे को फॉलोअर नहीं चाहिए, मेरे को शिष्य नहीं चाहिए, मेरे को धन नहीं चाहिए। ये चेतना महाप्रभु का उपदेश है, चेतना महाप्रभु का उपदेश है कि मेरे को टिकटॉक फॉलोअर नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, कृष्ण चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण को प्राप्त करना है ये क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ा केवल बोले बढ़ रहा है मगर फिर भी नहीं मिल रहे हैं, बढ़ाने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न किसी का, ओके ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।